मेरे आत्मीय दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आस्था पर सुनते 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 लाइफ मैनेजमेंट के प्रति आपकी जो आस्था थोड़ी बहुत होगी वो कमजोर पड़ने लगी होगी, लेकिन आज भर मुझे और इजाजत दे दें, इसलिए क्योंकि जब सुबह मैं वॉक कर रहा था तो मुझे जापान की एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी लोक कथा स्मरण हो आई। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी यह लोक कथा जो मुझे इतनी प्रभावित कर रही है मैं अपने प्रिय श्रोताओं तक पहुंचाऊं। तो पहले थोड़ी सी बात इसके संदर्भ में कर लेते हैं। देखिए, जब हम लोक कथा कहते हैं तो दरअसल वो होती क्या है? सामान्य रूप में तो हमें यही लगती है कि यह एक कहानी है, लेकिन उसके आगे जो लोक शब्द लगा हुआ है वो बहुत गहरी बात की ओर इंगित करता है। मैं एक कहानी लिख सकता हूं तो मेरी वो बौद्धिक कहानी होगी, है ना, साहित्यिक कहानी होगी, वो मैंने लिखी है। लेकिन आप जानते हैं कि लोक में तो लिखने वाला कोई नहीं होता, न तो कोई लोक कथाएं लिखता है, न लोक मुहावरे लिखता है, और न लोग कोई लोक गीत लिखता है। तो फिर ये विकसित कैसे होते हैं, ये डेवलप कैसे होते हैं? उनका रिटर्न फॉर्मेट भी आपको नहीं मिलता, न हम उनके रचनाकारों के नाम जानते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी होती है दोस्तों। इसका मतलब यह हुआ कि लोक जीवन में जो कुछ भी प्रचलित होता है वो हमारी चेतना के बहुत गहरे मौजूद रहता है, और इतने गहरे मौजूद रहता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, सबकॉन्शियस लेवल पर ही उसका ट्रांसफर होता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी को। सोच करके देखिए, इसका मतलब है कि हमारी जो मूल चेतना है लोक जीवन उसको रिफ्लेक्ट करता है, हमारी जो मूल चेतना है वो लोक जीवन में ही प्रतिबिंबित होती है, याद रखिए। इसलिए जो कुछ भी लोक जीवन में प्रचलित है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन्हें गवारू कह के उनकी उपेक्षा मत करें, उन्हें फालतू की बातें समझ करके, अज्ञानी समझ करके दरकिनार न कर दें। वे ही सच्चे जीवन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमने तो ओढ़ी हुई जिंदगी की शुरुआत की है, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया है, उसमें सुधार कर दिए, काट छांट कर दी है, लेकिन जो प्राकृतिक वन है वो तो वही है। मैं चेतना के संदर्भ में बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको आज एक जापान की लोक कथा सुनाने जा रहा हूं तो आपको इसे इस रूप में देखना होगा कि जापान की चेतना में आस्था कितने गहरे रूप में मौजूद है। और ऐसा केवल जापान के ही लोक जीवन की बात नहीं है, पूरी दुनिया के लोक जीवन की बात है। आप अपने गांव के बारे में सोच करके देखिए, इस मायने में सच में जो इंडियन फिलॉसफी है वो अद्भुत है। मतलब आप सोचिए कि गांव में चले जाइए तो पता लगा सभी गांव के अपने अपने ग्राम देवता हैं। ग्राम देवता मतलब आपने एक आस्था का केंद्र निर्मित किया है, वही है ग्राम देवता। मतलब देवता एक ही हैं, लेकिन हर गांव को इस बात की स्वतंत्रता है, आजादी है। इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक रिलीजन और क्या हो सकता है कि आप अपने अपने देवता निर्मित कर सकते हैं। यहां तक कि एक ही देवता है, हनुमान जी हैं, सबके हैं, लेकिन सब उन्हें अपना अपना नाम दिए हुए। कोई पिपलिया हनुमान जी कह रहा है, कोई मनोकामना हनुमान जी कह रहा है, कोई हनुमान जी कह रहा है, जिनकी जो मर्जी में आया वो नाम दे दिया। सोच करके देखिए, ये कम बड़ी बात है? ये हिंदुस्तान की ताकत है, चेतना की समझ है कि जो आस्था होगी लादी नहीं जा सकती। आपको अपने लिए खुद ढूंढना पड़ेगा, उसका निर्माण करना पड़ेगा, और वहां फिर अपने मस्तिष्क को, अपनी चेतना को केंद्रित करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए एक जापानी प्यारी सी लोक कथा सुनते हैं। एक नौजवान जापानी जोड़ा था, नई नई शादी हुई थी, और वो जो नौजवान था वो समुराई था। समुराई वहां के वीर लोगों को कहा जाता है, योद्धाओं को समुराई कहा जाता है, राइट? वो जो योद्धा, जो जवान था वो समुराई था। विवाह करके और अपनी पत्नी की विदाई करके वो अपने घर को लौट रहा था, लेकिन लौटने के लिए उसे एक बहुत बड़ा समुद्र पार करना था, या कह लीजिए बहुत बड़ी नदी पार करनी थी। दोनों नाव में बैठे और नदी के उस पार पहुंचने के लिए बस नाव खेना उस योद्धा ने, समुराई ने शुरू कर दिया, नौजवान साथी ने। उसकी पत्नी सामने बैठी हुई है, दोनों में प्रेम प्यार की बातें हो रही हैं, दोनों अपने जीवन के सपने देख रहे हैं, खूबसूरत सपनों का ताना बाना बुना जा रहा है कि अचानक क्या होता है? अचानक होता है कि समुद्र में तूफान आने लगती है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, लग रहा है कि नाव अब डूब ही जाएगी, अब बचना संभव नहीं है। लेकिन वो जो योद्धा है वो लगातार नाव खेता चला जा रहा है। जब नाव खेता चला जा रहा है और जब उनकी पत्नी ने देखा कि समुराई तो ज्यों का त्यों बैठा हुआ नाव खेरा, यानी कि उसका पति, तो वो और डर के मारे चीखती है और अपने पति की गोद में आकर के गिर जाती है, और पति उसके सिर पर हाथ रख देता है। उसे अपने से लिपटा लेता है। अब जो उसकी पत्नी है उसका चेहरा शांत हो जाता है, चेहरा उसका शांत हो जाता है, उसका भय कम हो जाता है। लेकिन वो देखती है कि समुराई के चेहरे पर तो भय का कोई भाव ही नहीं है, वो उसी तरह से खुश है, उसी तरह से बातें कर रहा है, उसी तरह से नाव खेता चला जा रहा है। वो उसके भयहीन चेहरे को देख करके वो खुद से फिर से भयभीत हो जाती है और बोलती है, इसको तो कोई डर ही नहीं लग रहा है। तो फिर पूछती है, कितना तूफान आ रहा है, हमारी नई नई शादी हुई है और हम अब जीवन नहीं जी पाएंगे, हमारा जीवन खत्म होने को है, हमारी नाव डूब जाएगी, हर हमेशा हमेशा के लिए हम बिछुड़ जाएंगे और तुमको डर ही नहीं लग रहा है। तो वो जो समुराई है, जो पति है, वो उससे एक छोटा सा प्रश्न करता है। वो कहता है कि पहले तुमको बहुत डर लग रहा था लेकिन अब तुमको डर नहीं लग रहा है, अब तुमको क्यों नहीं डर लग रहा है? तो उसकी पत्नी जवाब देती है, क्योंकि तुम्हारे पास जो मैं हूं, मैं तुम्हारे तुमसे लिपटी हुई हूं, इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे तुम पर विश्वास है। तो वो पति योद्धा कहता है कि जिस तरीके से तुमको मुझ पर विश्वास है और तुमको भय नहीं लग रहा है, उसी तरह मुझे भी किसी पर विश्वास है और मुझे भय नहीं लग रहा है। इस विश्वास को आप कह सकते हैं कि आस्था। बस बात खत्म हो गई। दोस्तों, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और हमारा जो लोक जीवन है वो इस आस्था को बहुत गहराई से जीता है, बिना सोचे समझे जीता है, अपने आप ही जीता चला जाता है। उससे आप इसकी व्याख्या मांगिएगा तो वो कुछ भी नहीं बता सकेगा। कुल मिलाकर के मित्रों, यही है आस्था का मासूम सा प्यारा सा चेहरा। अब इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। 2 दिनों के लिए दोस्तों आप सब मुझे इजाजत दें, फिर आप सबसे मुलाकात होगी और फिर और बातें होंगी। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।